कई साल पहले सुबह के वक्त मैं कुस्कू परो जो एंडीज पहाड़ों के बीच है की पतली गलियों से गुजर रहा था, जब मैंने वहां एक देहाती वासी को एक सड़क पर चलते देखा। वो कद से बड़ा आदमी नहीं था, पर एक काफी भारी चलने की लड़कियों का बोझ पीठ पर लादा जा रहा था। वो बोरी उसके कद के बराबर की थी, उसका भार शायद उसके वजन के बराबर था। उसने बोरी को रस्सी से जकड़ रखा था जो बोरी के नीचे से घेर रही थी और उसके माथे के सामने से। रस्सी को उसने कस के सर के दोनों ओर पकड़ रखा था। सर को कटने से बचाने के लिए उसने माथे पर रस्सी के नीचे एक कपड़े का चिथड़ा रखा था। बोझ के नीचे वो झुककर धीमे धीमे मुश्किल से चल रहा था। वो आदमी लकड़ियों को बाजार में बेचने ले जा रहा था। आम दिन में वो शायद एक या दो या तीन चक्कर मारता होगा उसी समान उलझन वाला बोझ पहुंचाने के लिए। उसे झुकते हुए शरीर की याद रास्ते पर कशमकश करते हुए सालों के गुजरने पर भी प्रभावशाली बनी है। कितनी बोझ वो कितने सालों तक उठाएगा? जिंदगी हम सभी पर बोझ डालती है, कुछ हल्के कुछ निर्दयी। लोग हर दिन ऐसे बोझों के नीचे कुचले जाते हैं। हम में से काफ़ी लोग ऐसी चक्की में हाथापाई करते हैं। ये हृदय और शरीर पर भारी हो सकते हैं। ये चिंतातुर अत्याचारी और थकाऊ हो सकते हैं और कई साल चल सकते हैं। आमतौर पर हमारे बोझ तीन स्रोतों से आते हैं। कुछ बोझ हमारे अपने अपने प्रदेश के हालातों पर निर्भर हैं। बीमारी, शारीरिक बेबसी, तूफान और भूकंप कभी कभी हमारे किसी दोष बगैर आते हैं। हम इन विपत्तियों के लिए तैयारी कर सकते हैं और कभी कभी पूर्वानुमान भी कर सकते हैं, पर सामान्य रूप से जीवन के दरमियान हम सब ऐसी कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। और कुछ बोझ हैं जो हमारी गलती जो दूसरों की गलती द्वारा थोपे जाते हैं। दुर्व्यवहार, लतें और स्वार्थ, घर को बना सकते हैं, पर निर्दोष परिवार के लिए सदस्यों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं है। पाप, अत्याचार, बोझ की से लदे हुए बलि जीवन की राहों में छोड़ जाते हैं। कम गंभीर दुष्कर्म जैसे गपशप दूसरों को कष्ट पहुंचाते थे। हमारी खुद की गलतियां हमारे कुछ समस्याओं की जड़ है। सबसे भारी बोझ जो हम डाल सकते हैं वो हम पर पाप का है। हम सभी को वो अफसोस, पछतावा और दर्द पता है जो प्रभु का आज्ञा पालन न करने से आता है। बोझ जो भी आए, प्राकृतिक वजहों से या औरों के दुर्व्यवहार से या हमारी गलतियों से, हम सब स्नेही स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं जिनकी हमारे अनंत विकास और प्रगति की योजना के अनुसार उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमें उनके पास लौटने के लिए तैयार कर सकते हैं। जो मुश्किलें और पीड़ा हमें नसीब हो, जितनी भी कठिन हो, सिर्फ एक छोटे क्षण के लिए होगी, और फिर अगर हम उसे अच्छी तरह से सहेंगे, ईश्वर हमें स्वर्ग में उठाएंगे। हमें जो मुमकिन सब करना चाहिए अपना भार अच्छी तरह से उठाने के लिए, जितने भी वक्त के लिए हमारा छोटा क्षण चले। भार हमें मौका देते हैं उन नीतियों को पालने का जो हमें शुद्ध बनाएंगे। वो निमंत्रण देते हैं पवित्र आत्मा के प्रभाव के सामने झुकने के लिए और स्वाभाविक इंसान को परे करने के लिए, एक संत बनने के लिए प्रभु ईसा मसीह की क्षतिपूर्ति द्वारा, और एक बच्चे जैसे बनने के लिए जो आज्ञाकारी, विनम्र, धैर्यवान, प्रेम से भरा, सब बातों में प्रभु के सामने समर्पण करने के लिए तैयार, वैसे ही जैसे एक बच्चा पिता को समर्पण करता है। इस तरह बोझ आशीर्वाद बनते हैं। अक्सर ये आशीर्वाद आसानी से नजर नहीं आते, उन्हें समझने में वक्त लगता है। चार उदाहरण यह समझाने में सहायता देंगे। पहले एडम को कहा गया था, जमीन को तुम्हारे लिए शापित किया गया है, मतलब उसकी भलाई के लिए, और तुम्हारे चेहरे के पसीने द्वारा तुम रोटी खाओगे। परिश्रम ये एक निरंतर बोझ है, पर वो एक निरंतर आशीर्वाद भी है हमारी भलाई के लिए, क्योंकि वो पाठ पढ़ाते हैं जो हम सिर्फ अपने चेहरे के पसीने के द्वारा सीख सकते हैं। दूसरा, आल्मा ने समझाया कि गरीबी और पीड़ा ने जोरम के लोगों को सच में विनम्र बनाया था, और उस पीड़ा ने उन्हें सुसमाचार सुनने के लिए तैयार किया था। आल्मा ने कहा, तुम इस कारण धन्य हो कि तुम्हें जबरदस्ती विनम्र बनाया गया है। हमारी आर्थिक चुनौतियां भी शायद हमें प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार करेंगी। तीसरी, उनकी लंबी दौरान की युद्ध की वजह से बहुत निफाय और लेमन के लोगों के दिल पीड़ा की वजह से नम्र हुए थे, इतने कि वो ईश्वर के सामने बड़ी गहरी विनम्रता के साथ राजनीतिक अशांति, सामाजिक दंगा और दुनिया के कुछ स्थानों में आधुनिक गरियंतुन डाकू हमें इन सामाजिक तूफानों से स्वर्गीय ऐश्वर्य पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चौथा, जोजो स्मिथ को कहा गया था कि उसने सही गई कई साल से शत्रुओं के हाथ भयानक बातों द्वारा उसे अनुभव मिलेगा, और वो सभी के भलाई के लिए होगी। जो पीड़ा हम दूसरों के दुर्व्यवहार की वजह से सहते हैं, वो एक भगवान पर दर्दनाक विद्यालय है खुद का बर्ताव सुधारने के लिए, और हमारे खुद के बोझ उठाने से हमें सहानुभूति का एक तालाब निर्माण होता है। अपोस्टल पॉल ने सिखाया कि हम एक दूसरे के बोझ उठाने चाहिए, ताकि हम ईसा मसीह के कानून पूरा कर पाए। एक दूसरे के बोझ उठाने चाहिए ताकि वो हल्के हो पाए। शोक जताने वालों के साथ शोक जताना चाहिए, उन्हें आराम पहुंचाना चाहिए जिन्हें आराम की जरूरत है। बपतिस्मे के वचन रखने से हमारे बोझ हल्के होते हैं। वो ऐसी सहायता दूसरों को देते हैं पवित्र स्थान पर खड़े हैं। ये समझाते हुए मसीहा ने सिखाया, हमने आपको कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा और आपको जल दिया, आपको कब अजनबी देखा और आश्रय दिया, या नंगा और कपड़े पहनाए, हमने आपको कब बीमार देखा और आपके पास आए। और राजा उनसे कहेगा, वास्तव में मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक तुच्छ भाई को वो किया, तुमने वो मुझे किया। इन सभी बातों में उद्धारकर्ता हमें पोषण देने वाली शक्ति और सहारा देता है, और अपने समय में मुक्ति देता है। जब एल्मा और उसके साथी नोवा की सेना से भाग के निकले, उन्होंने हिलम नाम का बस्ती बनाई। उन्होंने वहां सफलता पाई। बिना कोई संकेत लेमन की सेना ने उन्हें गुलाम बनाया। प्रभु के अलावा कोई भी उन्हें रिहा नहीं कर सकता था। वो रिहाई जल्द नहीं आए, उन पर काम लादने लगे, उन्हें प्रार्थना करने पर मृत्यु की धमकी दी। फिर भी आल्मा और उसके लोगों ने उनके दिल ईश्वर की ओर खोले, और उन्होंने उनकी मनोकामना जानी। उनकी भलाई और बपतिस्मे की प्रतिज्ञा का आज्ञा पालन करने से धीमे धीमे उन्हें रिहाई मिली। प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे कंधों पर लादा हुआ बोझ हल्का करूंगा, इतना कि तुम उसे महसूस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये करूंगा मैं कि इसके बाद तुम मेरी गवाही बन पाओ, तुम्हें यकीन हो कि प्रभु उसके लोगों के साथ होता है उसके पीड़ा के समय। फिर आल्मा और उसके बंधुओं पर लादे हुए बोझ हल्के हुए। प्रभु ने उन्हें शक्ति दी ताकि वो उनकी बोझ आसानी से उठा पाए। अब उन्होंने खुशी और बड़े सब्र के साथ प्रभु की इच्छा पूरी की। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि प्रभु की वाणी उन्हें फिर सुनाई दी कहते हुए कि तुम शांति ग्रहण करो, क्योंकि कल तुम्हें मैं गुलामी से मुक्त करूंगा। दया से ईश्वर का बेटा हमें पापों की गुलामी से रिहाई प्रदान करता है, जो सबसे भारी बोझ है जो हम उठाते हैं। अपनी क्षतिपूर्ति के दौरान उन्होंने पीड़ा सही ताकि वे उनके लोगों की पाप ले पाए, ताकि वो उनकी गलतियों को मिटा पाए उनके मुक्तिदाता की शक्ति से। मसीहा ने ये इन चीज़ों को सभी लोगों के लिए सहा ताकि उन्हें सहना नहीं पड़े अगर वो सिर्फ प्रायश्चित करें। जब हम प्रायश्चित करते हैं, हमें माफ़ी सिर्फ उन सहायता से मिलती है जो उद्धारकर्ता देता है। निश्चित मुझे पेरू का वो आदमी याद है जो लकड़ियों की भारी बोझ कशमकश करता हुआ चल रहा था। वो हम सभी का नमूना है, बोझ के नीचे हथापाई करते हुए। जैसे हम आज्ञा पालन करके करते हैं, वे हमें शक्ति देते हैं। प्रायश्चित करने पर हमें माफ करते हैं और हमें शांति और सुख के सदविचार से आशीर्वाद देता है। हमें अपने आप को खुशी और धैर्य से प्रभु को अर्पण करें। मैं प्रार्थना करता हूँ ईसा मसीह के नाम से, आमेन।